ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज आप सभी प्यारे शिव बाबा के अति अति स्नेही, जिनको बाबा बड़े प्यार से डबल विदेशी का टाइटल देता है। विदेशी तो सब हैं, लेकिन आप डबल विदेशी। हम सबका घर परम धाम है और परम धाम से हम सभी आत्माएं इस सृष्टि पर पार्ट बजाने आए हैं, यात्रा पर आए हैं। जब हमारी यात्रा पूरी हो गई तो फिर हम घर वापस चले जाएंगे। तो इसीलिए बाबा ने हम सबको यही कहा कि संसार के अंदर तुम सभी आत्माएं पाठ बजाने आती हो, और पाठ हम सबको कैसा बजाना है वो पहले नहीं जानते थे, लेकिन बाबा ने अभी हम बच्चों को हर बात समझाई है। आज जब हम सब बाबा की मुरली सुन रहे थे तो बाबा ने आज की मुरली में एक बहुत अच्छी बात सुनाई, जो आज की मुरली का सार था। विनाश काले प्रीत बुद्धि और विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो हमको विनाश काले प्रीत बुद्धि बनना है और जो विनाश नहीं चाहते उनको कहेंगे विपरीत बुद्धि। हम चाहते हैं तो प्रीत बुद्धि। क्यों चाहते हैं वो भी बाबा ने हम सबको बहुत अच्छी तरह से समझाया है। बाबा ने कहा कि बच्चे, कुछ नया पाना होता है तो पुराना छोड़ना होता है। जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक पा नहीं सकेंगे। पाने के लिए कुछ छोड़ना होता है, और जब छूटेगा तब ही मिलेगा। तो हमें भी ये पता है कि बाबा हमारे लिए सतयुगी नई दुनिया, श्रेष्ठ दुनिया, पावन दुनिया, सुखमय दुनिया, स्वर्णिम संसार जिसको भगवान कहता है, वो हमारे लिए बाबा बना रहा है। और हम उस दुनिया में जाने वाले हैं। तो जब कोई चीज नई मिलती है तो उससे प्यार होता है, पुरानी छूट जाती है। तो बाबा ने हम बच्चों को संगम पर सब कुछ नया दिया है। बाप भी नया मिला है और बाबा हम बच्चों को भी रिजुग्नेट कर रहा है, नया बना रहा है, परिवर्तन कर रहा है। हम पहले क्या थे और अभी क्या बन गए, वो बाबा ने हम बच्चों को परिवर्तन, नए बन गए ना, हम सभी नए बने ना। क्या थे बाबा ने परिवर्तन कर दिया। तो जब परिवर्तन हमारा हो जाता है तो परिवर्तन से ही प्राप्ति होती है। जब तक परिवर्तन नहीं है तब तक हम प्राप्ति नहीं कर सकते। आज मुझे कहा कि हम कैसे निश्चिंत रह सकते हैं, कैसी भी समस्याएं आए, कैसे भी पेपर आए, उसके अंदर हम निश्चिंत रहे, निरसंकल्प रहे, हमारी स्थिति अचल अडोल रहे, डामाडोल ना हो, उसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है। स्थिति जो है वो डामाडोल क्यों होती है, है ना? स्थिति मनुष्य की डामाडोल क्यों होती है? जब अंदर में कोई भय होता है, है ना? तो होती है, पता नहीं क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, वो भय स्थिति को डामाडोल कर देता है, तो निश्चिंत नहीं रह सकते। और बाबा ने हम सबका भय खत्म कर दिया है, है ना? बाबा ने हम सबको सबसे पहले क्या बनाया, निर्भय बनाया है। तो निर्भय बाबा ने हम सबको बना दिया, इसलिए हमें कोई भय नहीं, हम निश्चिंत हैं। क्योंकि इस ड्रामा के अंदर जो भी पार्ट है, आज बाबा ने कहा ना, एक्यूरेट है ड्रामा, एक्यूरेट है। तो जब ड्रामा एक्यूरेट है तो हम हलचल में नहीं आ सकते हैं, हमें पता है। जैसे देखो मौसम चेंज होता है, तुम कहते भाई सर्दी आनी है, डर लगता है सर्दी क्यों आई, क्यों आई, क्यों आई, पता है सीजन आएगी, फिर बरसात आएगी, डर लगता है क्यों आती है, पता है आएगी, ये चक्र है, सर्कल है। ऐसे बाबा ने भी हम बच्चों को ड्रामा की नॉलेज दे करके हम बच्चों को बाबा ने निश्चिंत कर दिया, निरसंकल्प कर दिया। ड्रामा के अंदर हरेक आत्मा का पार्ट क्या है, फिक्स है। तो जब आत्मा का पार्ट फिक्स है, उसमें चेंज परिवर्तन नहीं हो सकता है। और बाबा ने हम सबको ये भी बताया कि ड्रामा खेल है, तो खेल के अंदर क्या होता है, हार और जीत होती है, है ना? पता है ना खेल में क्या है, हार भी होगी जीत भी होगी। तो हमें डर लगता है क्या, जो खिलाड़ी होते हैं उनको ये पता है, इस ड्रामा के अंदर खेल और हार और जीत बनी हुई है, डरता नहीं है, निडर होकर के खेलता है। तो बाबा ने भी हम बच्चों को ये ड्रामा की नॉलेज दे करके कहा, बच्चे ये ड्रामा है, इसके अंदर जो खेल हार और जीत का खेल बना हुआ है। और बाबा ने ये भी हम बच्चों को बताया कि बच्चे जो भी पेपर आते हैं, परीक्षाएं आती हैं, वो आप सबका एक पेपर है। जब पेपर होता है तब क्लास आगे बढ़ता है, जब तक पेपर नहीं होगा तो क्लास आगे बढ़ेगा नहीं, बढ़ सकता ना। पेपर को पास करेंगे तो क्लास आगे बढ़ेगा। तो बाबा ने हम बच्चों को इस ड्रामा रूपी खेल की नॉलेज दे करके हम आत्माओं को क्या कर दिया, निश्चिंत कर दिया है। तो हम निश्चिंत हैं कि हर एक आत्मा का पार्ट अपना है, बजा रहे हैं। और निश्चिंत हम कब रह सकेंगे, जब हम बच्चों को उस बाप पर निश्चय होगा ना? जितना निश्चय हम रखेंगे, निश्चय बुद्धि बनेंगे, उतना हम निर्भय बनेंगे, निश्चिंत रहेंगे। निश्चय क्या, हमारा साथी कौन है, हमारा हाथ किसने पकड़ा है, हमारा साथी कौन बना है, स्वयं पर निश्चय, बाप पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय, पाठ पर निश्चय, कर्तव्य पर निश्चय, जितने निश्चय बुद्धि हमें उतने हम निश्चिंत रहेंगे। अगर निश्चय में स्थिति डामाडोल होती है तो हम निश्चिंत नहीं रह सकते, संकल्प विकल्प हमारे चलते रहेंगे। और निश्चिंत हम ये भी रह सकते हैं कि हमें ये निश्चय है कि हमारा साथी कौन है, हमने किसका हाथ पकड़ा है, कौन हमारा साथी है। देखो, भक्ति के अंदर भी एक गीत गाते थे, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो हमारा साथी कौन बना है, सर्वशक्तिवान सर्व समर्थ हमारा साथी है। तो जब हमारा साथी सर्व समर्थ है, सर्वशक्तिवान है, तो हम क्या रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे, कोई डर नहीं रहेगा, कोई ऊंचाई नीचाई नहीं आएगी, बाबा हमारे साथ है। अभी एक दो दिन पहले की मुरली में बाबा ने कहा था कि बच्चे मैंने तुमको छतरी नहीं, बड़ा छत्र दिया है, बड़ा छत्र दिया है, उसके नीचे तुम बच्चे रहते हो तो सेफ रहेंगे, छत्र छाया के नीचे जिनके ऊपर स्वयं भगवान की छत्र छाया है, स्वयं भगवान की छत्र छाया है, तो वो आत्मा सदा निश्चिंत रहेगी। जब छत्र छाया से बाहर निकलते हैं तब फिर क्या होगा, जैसे देखो छतरी के नीचे खड़े होते हैं तो धूप नहीं लग सकती, बरसात नहीं लग सकती, है ना। ऐसे ही हम बाबा की छत्र छाया में हैं तो हमें किसी भी प्रकार की परिस्थिति हमारे ऊपर नहीं आ सकती। जब बाप की छत्र छाया से निकलते हैं तब फिर क्या होता है, परिस्थितियां आती हैं। इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे सदा बाप की छत्र छाया में रहो, बाप को अपना साथी बना करके चलो। जब सर्वशक्तिवान सर्व समर्थ स्वयं भगवान हमारा साथी है तो हम आत्मा हर पल निश्चित है। उनको कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस बाबा है तो सब कुछ है ना। बाबा हमारा क्या है? संसार है। तो संसार में जो मिलता है वो उस एक में मिल जाता है। कहते हैं ना, भगवान संसार है, हमारा संसार है। तो बाबा मिला माना सब कुछ मिला, और बाबा नहीं है तो कुछ भी नहीं। देखो, पहले हमारी जो जीवन थी उसमें हमारे पास सब कुछ था ना, सब कुछ था ना, पैसा था, धन था, संबंध थे, दौलत थी, सब कुछ था, लेकिन बाबा नहीं था। और बाबा नहीं था तो जीवन क्या थी, है ना? बाबा नहीं था तो जीवन नीरस थी। जीवन में रस नहीं था। सब कुछ होते हुए भी हम कुछ ढूंढ रहे थे, कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। वो उमंग नहीं था, वो उत्साह नहीं था, वो खुशी नहीं थी, वो आनंद नहीं था। और जब बाबा मिला तो बाबा के मिलने के बाद हमारे जीवन में क्या आया, क्या आया हमारे जीवन में? बाबा मिला तो खुशी आई, आनंद आया है, शांति आई, सुख आया, निश्चिंत आई कि भाई हमारा साथी बाबा है, सर्वशक्तिवान है, एक ही स्मृति हमारे जीवन के अंदर हर प्रकार की शक्तियां भर देती है ना। एक ही सर्वशक्तिवान बाबा मेरा है, तो सर्व शक्तियां हमारे अंदर आ जाती है। तो सर्व शक्तियों की खान स्वयं भगवान हमारा साथी है। तो उस साथी को हम जितना साथ रखेंगे उतना हम निश्चिंत रहेंगे। जब बाबा साथ में नहीं होता है तभी क्या होता है, अनेक प्रकार की परिस्थितियों से हम पास करते हैं, फिर घबराते हैं, फिर टेंशन में आते हैं, फिर सोचते हैं क्या करें क्या करें। लेकिन बाबा है तो सोचने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। कोई भी कितना भी बड़ा कार्य आ जाए, लेकिन बाबा है तो पार हो जाएंगे। और अगर बाबा नहीं है तो हम कितना भी कोशिश करें हम निश्चिंत नहीं रह सकते। तो अपनी जीवन को निश्चिंत बनाने के लिए बाबा को हमें साथ रखना है। बाबा कहते हैं ना, बाबा साथ है तो बाबा की शक्तियां भी साथ हैं। जब भगवान साथ है उसके जो खजाने हैं वो भी साथ हैं। और बाबा ये भी कहता है, देखो बाबा ने कल मुरली में कहा था कि बच्चे में बाप बन कर आता। शिव बाबा हमारे पास किस संबंध से आता है? है बाप के संबंध से आता है। शिव बाबा सबसे पहले हम बच्चों से बाप का संबंध जोड़ता है ना। तो बाप के संबंध में हमको सर्व प्राप्ति है। कहते हैं ना, बाप का वर्षा, तो बाप का वर्षा अर्थात बाप की सर्व प्राप्तियां में बाबा आके हम सबसे पहला संबंध यही जोड़ता है कि तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारा बाप हूं। तो जब बाप हमारा है तो बाप का जो भी खजाना है वो सब हमारा है। बाबा पहला पहला शब्द मुरली में हम बच्चों को कौन सा बोलता है, कौन सा बोलता है? मीठे बच्चे है? किसी ने कहा मीठे बच्चे? बोलो, कहा किसी ने मीठे बच्चे? मीठे नहीं, मीठे मीठे, है ना? क्या बोलता है बाबा, मेरे मीठे मीठे बच्चे, है ना? तो भगवान मीठे बच्चों, भगवान को बच्चे मीठे लगते हैं। देखो, बाप को अपने बच्चे मीठे लगते हैं ना, प्यारे लगते, मीठे माना प्यारे। तो हम भगवान के प्यारे बच्चे हैं, और प्यारे बच्चे भगवान के कैसे होने चाहिए? भगवान के प्यारे बच्चे कैसे होने? तो जो बाबा की आशाएं हम सबके प्रति, उन आशाओं को हम पूर्ण करें। तो बाबा हम बच्चों से क्या चाहता है, क्या चाहते हैं बाबा हम बच्चों से, हैं? जैसे बाबा कहता है कि मेरे होवनहार देवताएं हैं ये, किस नज़र से भगवान हमको देखता है, बोलो, किस नज़र से भगवान देखता है? होवनहार देवताओं की नज़र से देखता है। बाबा वर्तमान नहीं देखता है, बाबा भविष्य, ये मेरे होने वाले देवी देवताएं हैं, देवता की नज़र से देखता है। तो देवताएं क्या होते हैं, हा? देवताएं कोई चिंता में आते हैं, कोई टेंशन में आते हैं? उसकी दुनिया में कोई चिंता है, कोई टेंशन है, कोई फिक्र है? देवताओं की दुनिया में सुख चैन है, है? कहते हैं ना भाई, सुख चैन की बंसी बजती है। तो देवताओं की दुनिया में सुख चैन की बंसी, तो बाबा हम बच्चों को ऐसी दुनिया में ले जा रहा है, और उसके लिए हम बच्चों से बाबा अभी क्या करा रहा है, ये पुरुषार्थ करा रहा है कि बच्चे अभी तुम मुझे याद करके अपने अंदर सर्व शक्तियों से अपने को भरपूर करो, अर्थात अपनी आत्मा की बैटरी को क्या करो, चार्ज करो। तो हम सभी मधुबन में आते किस लिए आते, आप सभी मधुबन में किस लिए आए हैं? बैटरी चार्ज करने आए ना, तो अपनी बैटरी को चार्ज करना है। तो बैटरी चार्ज कैसे होगी, भाई बैटरी चार्ज कैसे होगी? जितना हम बाबा को याद करेंगे उतनी हमारी बैटरी चार्ज होती जाएगी, हमारे अंदर वो शक्ति भरती जाएगी। तो जब आत्मा के अंदर विल पावर रहती है, शक्ति रहती है, तो आत्मा क्या रहती है, निश्चिंत रहती है। देखो, किसी के पास स्थूल में अगर धन संपत्ति रहती है तो वो क्या रहता है, निश्चिंत रहता है, भाई मेरे पास खाने के लिए सब सुख सुविधाएं हैं, इसलिए उसको कोई चिंता नहीं होती। और जिसके पास नहीं होता है उसको क्या रहती है, चिंता रहती है, नहीं है, आगे क्या होगा, कैसे होगा, वो निश्चिंत नहीं रह सकता। तो बाबा ने हम बच्चों को संगम पर ज्ञान का इतना खजाना दिया है, आज भी कहा ना, ज्ञान और योग, ज्ञान का खजाना दिया, योग की ताकत भरी बाबा ने। तो ज्ञान का खजाना है और योग से बाबा शक्ति हम बच्चों के अंदर भर रहा है। तो जितना ज्ञान और योग की ताकत हम सबके अंदर भरती जाएंगी, उतना हम आत्माएं निर्संकल्प और निश्चिंत बनते जाएंगे, कि निश्चिंतता आती जाएगी कि बाबा से हम बच्चों को ज्ञान के इतने खजाने मिल रहे। और एक एक खजाने की बाबा हम बच्चों को कहता है, बच्चे कितने वैल्यूफुल खजाने, ज्ञान के एक एक रतन बाबा तुम बच्चों को कितने वैल्यूफुल देते, जिसकी कीमत उन रत्नों से हम कर नहीं सकते। तो बाबा हम बच्चों को ज्ञान रत्नों से भरपूर बनाता है, और उन ज्ञान रत्नों को हम जितना धारण करेंगे और बाबा से जो शक्ति लेंगे, उन शक्ति के आधार पर हम आत्मा सदा निश्चिंत रहेगी। तो निश्चय बुद्धि रहे, बाबा हम बच्चों को सर्व खजानों से भरपूर कर रहा है। और मधुबन में भी हम सभी किस लिए आए हैं? बाबा से हर प्रकार का खजाना भरपूर करने के लिए बाबा ने हम सबको अपना बना करके क्या कर दिया, एकदम निश्चिंत बना दिया है। है चिंता कोई 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 है किसी को? नहीं है ना, निश्चिंत बन गए क्योंकि बाबा हमारे साथ है। ठीक है, ओम शांति।
थैंक यू सो मच दीदी, सबको अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, निश्चिंत होना है। हाँ, तो क्या करना है, बैटरी को चार्ज करना है। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड अभी हम कुछ प्रश्न पूछेंगे। अगर आप लोगों के भी कोई क्वेश्चन है तो आप एक चिट्ठी में लिख करके आप हमें दे सकते हैं। तो दीदी जी, पहला प्रश्न है, जैसे कि टॉपिक था निश्चिंत होना है, तो यहाँ दो शब्द है, निश्चिंत और अलबेलापन, दोनों में क्या अंतर है?
निश्चिंत और अलबेलापन, अलबेलापन होता है जो कोई भी कार्य करते हैं ना, तो उसमें अटेंशन नहीं होता है, कार्य करने में अटेंशन नहीं है, कर रहे हैं, हो गया। और जो कार्य होगा ना अलबेलेपन से करेंगे वो राइट नहीं होगा। और जो अलबेलापन नहीं होता है, निश्चिंत होकर के कार्य करेंगे तो कार्य राइट होगा।
थैंक यू सो मच दीदी। आपने अभी जब आप क्लास करा रहे थे तो एक वर्ड आपने यूज किया कि ड्रामा फिक्स है। तो कई बारी बाबा, वैसे तो जैसे हम बड़ों से पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि पास्ट के लिए ही ड्रामा को यूज करना चाहिए, फ्यूचर के लिए नहीं। बट अगर हमारा एक एक थॉट, फीलिंग, इमोशन, जो कुछ भी आ रहा है, या हमसे अगर कुछ गलती हो रही है, तो क्या हम कह सकते हैं वो ड्रामा में था, हमारी गलती नहीं थी?
नहीं, देखो बाबा ने हम सबको ड्रामा की नॉलेज दी है कि बच्चे ये 5000 वर्ष का ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। लेकिन ड्रामा के अंदर जो पार्ट भरा हुआ है, जैसे रील होती है उसके अंदर पार्ट भरा होता है, और उसको जब उसको बजाया जाता है, रिवाइज किया जाता है, तो पता चलता है ना कि ये है। जब तक वो नहीं बजाएंगे तो कैसे पता चलेगा? तो ये भी ड्रामा का पार्ट है जो हम बजाते रहते हैं और तभी पता चलता है। अगर हम कहें मेरे ड्रामा में होगा तो मैं कर लेंगे और ये पार्ट मेरा होगा तो हो जाएगा, तो मुझे क्या पता है मेरा क्या पार्ट है? इसलिए हमको प्रैक्टिकल में करना होता। और बाबा ने हम बच्चों को ये भी ज्ञान कहा कि बच्चे ड्रामा लास्ट में लाना है, पुरुषार्थ में पहले ड्रामा में होगा तो मैं कर लूँगा, मुझे क्या पता मेरा ड्रामा में क्या है, क्या रील भरी हुई है, मुझे तो पता ही नहीं है ना। वो खुलेगी तो मुझे पता चलेगी ना। तो इसीलिए मैं जब प्रैक्टिकल में करूँगी तब पता चलेगी। और बाबा ने लास्ट के लिए ड्रामा दिया है, पुरुषार्थ फर्स्ट है। कहते हैं पुरुषार्थ और प्रारब्ध दो चीज है, तो प्रारब्ध में होगा तो पुरुषार्थ करेंगे, और पुरुषार्थ करेंगे तो प्रारब्ध बनेगी। तो पहला कौन है भाई, पहले कौन, पुरुषार्थ या प्रारब्ध, है ना? तो उसमें पहले लिया जाएगा पुरुषार्थ फिर प्रारब्ध। हम ये कहे भी हमारे प्रारब्ध होगा तो हम पुरुषार्थ कर लेंगे, तो नहीं होगा। अभी जैसे हम मिसाल के तौर पे हम कहेंगे भाई मेरे भाग्य में होगा तो मैं खाना खा लूंगा, बैठ जाओ आप, हैं, थाली रखी है, मेरे भाग्य में होगा तो खाना खा लूंगा, तो थाली उठ के तो नहीं आएगी ना, उसके लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना हमको। तो इसीलिए पुरुषार्थ फर्स्ट है, प्रारब्ध पीछे।
तो क्योंकि हमें पता नहीं आगे का कि आगे क्या होना है, तो इसलिए हम ड्रामा वर्ड को यूज नहीं कर सकते। लेकिन दीदी जी, डेस्टिनेशन पॉइंट मतलब हमारा लक्ष्य, हर एक का पद तो निश्चित है, तो पुरुषार्थ होगा तो उतना ही
नहीं, वो तो ठीक है हमारा पद निश्चित, लेकिन मुझे क्या पता है मेरा पद क्या है, मुझे क्या मालूम मेरा क्या पद है। बाबा ने ऐसे कह दिया कि बच्चे देवता बनेंगे, लेकिन मैं कौन सा देवता बनूंगा वो तो पता ही नहीं है ना, उसके लिए तो मुझे पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा ना। देखो वैसे भी कहते हैं कि जो भाग्य में होता है भाग्य अनुसार ही मिलता है, लेकिन भाग्य अनुसार भाग्य पर बैठा नहीं जाता है, उसके लिए पुरुषार्थ किया जाता है।
ऑल राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय के अनुसार हमारे, क्योंकि सभी गृहस्थी हैं, घर में रहने वाले हैं, तो माया किस किस रूप में हमारे सामने आती है, क्योंकि वो तो बहुत अट्रैक्टिव रूप में आती है ना, हमें तो समझ नहीं आता, तो हम कैसे अटेंशन दें, हमें कैसे पता चले कि माया का रूप है।
देखो माया है, बाबा कहता है माया पल पल आती है, सेकंड सेकंड माया आती है, लेकिन अगर हमारा ज्ञान योग के ऊपर पूरा अटेंशन है और उस ज्ञान योग के आधार से जो माया आती है उसको हम समझ सकते हैं, ज्ञान योग पर अटेंशन है तो माया क्या है वो हम समझ सकते हैं कि ये माया है, ये व्यर्थ संकल्प है, बुद्धि में नॉलेज होगी तो समझेंगे ना।
ओके, क्लियर है आप सभी को? या ओके दीदी, आज मुरली में एक लाइन थी, स्नेह मेहनत को मनोरंजन से परिवर्तन कर देता है। तो क्वेश्चन ये है, हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा स्नेह बाबा के प्रति और गहरा होता जाए।
देखो स्नेह कब मिलता है, किसी से भी प्यार कब होता है, ऐसे नहीं हो जाता है, लेकिन उससे हमें कुछ प्राप्ति होती है तो प्यार होता है, अगर प्राप्ति नहीं है तो स्नेह नहीं होगा। तो हमें बाबा के से, हम बाबा के बने हैं तो बाबा से मुझे क्या क्या प्राप्तियां हुई हैं उनको सामने रखो। तो जब बाबा से प्राप्तियां मिली हुई सामने रहेंगी तो नेचुरल स्नेह होगा, प्राप्तियां स्नेह पैदा करती। अभी मुझे कोई फायदा ही नहीं तो मैं क्यों याद करूं। जैसे देखो कोई डॉक्टर है, कोई होलसेल कोई बहुत होपलेस बीमारी हो गई, ठीक नहीं हो रही, उसने हमें बहुत प्यार से हमारी बीमारी को ठीक कर दिया, तो सारी जिंदगी क्या याद करेंगे, उसको याद करेंगे ना, उससे प्यार होगा। किसी ने हमारा कोई फायदा कर दिया, हमको साथ दे दिया, तो उसको याद करते। तो जो उनसे प्राप्ति होती है वो स्नेह पैदा करता है। तो बाबा से भी हम बच्चों को क्या प्राप्ति हुई उस आधार से हमारा स्नेह बढ़ेगा। तब तो बाबा कहते हैं ना कि अमृत वेले में भी उठ करके तुम बच्चे ये प्राप्तियों को चेक करो कि बाबा से मुझे क्या क्या मिला है, और जब उस समय पर उस बात को सोचते हैं, प्राप्तियों को देखते हैं, तो खुशी बढ़ती है, खुशी बढ़ती है तो बाबा की याद आती है।
आपने जैसे कहा कि अमृत वेला, अब क्योंकि घर में रहते हैं, कोई जॉब करते हैं, किसी की नाइट शिफ्ट भी होगी, लेट सोना होता है, तो अमृत वेले का एग्जैक्ट टाइम क्या है?
देखो ऐसा है कि बाबा ने अमृत वेला तो हमारा 4 से 4:45 कहा है, लेकिन अगर किसी की नाइट ड्यूटी है या किसी की और कोई कारण से लेट होता है तो जब उठे उससे पहले बाबा को याद करो, उठ करके बाबा को याद करके फिर आगे का कारोबार करो। लेकिन अलबेले नहीं हो जाना है कि नहीं हम तो उठे ही 5 बजे और बाबा को याद 5 बजे करेंगे, नहीं, समय है तो हमारा वो समय उस अनुसार हमको करना है। अगर वो समय पर हमारा कोई कारोबार है तो फिर हम जब उठते हैं तो उस समय बाबा को याद कर सकते हैं।
तो जब उठे तब बाबा को पहले याद करे, लेकिन दीदी बाबा तो पूरे टाइम अवेलेबल है ना, 24 घंटे तो सुभाई क्यों?
नहीं, ऐसा है, देखो बाबा हमको सदा मिल सकता है, लेकिन हर समय का भी महत्व होता है। देखो हम भोजन खाते हैं, कहते हैं ना भाई भोजन में शक्ति मिलती है, लेकिन कोई कोई भोजन कहते सुबह में खाना चाहिए तो उससे शक्ति मिलती है। भोजन तो भोजन ही है, लेकिन सुबह में खाने से उससे ज़्यादा शक्ति मिलेगी। तो ऐसे बाबा से भी हम बच्चों को अमृत वेले हम बच्चों को बाबा से शक्ति विशेष मिलती है। क्यों विशेष मिलती है? क्योंकि एक तो आत्मा रात्रि को सो करके फ्रेश होती है, और फ्रेश होकर के उठते हैं तो हमारी बुद्धि फ्रेश होती है, तो उस समय पर अमृत वेला, तो उसमें अमृत मिलता है और बाहर का वातावरण भी शुद्ध होता है और स्वयं भी शक्तिशाली होते हैं, इसीलिए अमृत वेले का महत्व है।
बिल्कुल, और उस टाइम हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी एक्टिव होता है, तो हमारी जो भी विशेस है वो भी जल्दी से मैनिफेस्ट होने लग जाती है, तो ये भी एक कारण है। दीदी जी, आज मुरली में बाबा ने बात की ट्रिब्यूनल की, तो ट्रिब्यूनल में कौन कौन बैठेगा इसके बारे में अगर आप कुछ बता सके।
ट्रिब्यूनल में एक तो बाबा बैठेगा, और दूसरा बाबा हमेशा ये कहते थे कि जब कोई भी बात होगी उसकी सजा देगा। जैसे मान लो कोई टीचर है, स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट ने जो गलत किया उसका प्रूफ कराने के लिए उसके टीचर को बाबा सम्मुख लाएगा। जो भी होंगे, जिसके साथ जैसा होगा उनके सामने बाबा कराएगा, सामने सामने। बाबा तो होगा ही धर्मराज के रूप में, लेकिन प्रूफ तो बाबा देगा ना, जिनके साथ में व्यवहार किया होगा वो व्यक्ति सामने होंगे ट्रिब्यूनल। क्लियर कराता है बाबा, पिक्चर सारा दिखाएगा।
तो मतलब ब्रह्मा बाबा होंगे?
ब्रह्मा बाबा होगा, शिव बाबा होगा, ब्राह्मण परिवार भी होगा।
ओके और ट्रिब्यूनल में एक ब्रह्मा बाबा हुए, दूसरा जो भी निमित्त टीचर है वो और जिसके साथ गलत हुआ वो भी। लेकिन एक बार दीदी जी
देखो, कोई मैंने कोई गलत काम किया, तो गलत काम मैंने किया उसके सामने वाला कोई तो होगा ना जो कहेगा भाई ये गलत काम तुमने किया, तो बाबा उसको सामने रखकर उसको सारा पिक्चर दिखा के फिर सजा देगा, ऐसे ही नहीं देंगे।
ओके, तो ऐसे ही नहीं मिलने वाली सजा, जिसके साथ भी कार्मिक अकाउंट है वो सामने होंगे।
जरूर जरूर, तभी तो बाबा देखो कहता है ना, कई बार बाबा कहते मुरली में कि बच्चे अभी हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो अंत में बहुत पछताना पड़ेगा, है कि बाबा ने इशारा दिया था बच्चे पुरुषार्थ करो करो करो, दीदियों ने कहा था पुरुषार्थ करो करो, नहीं किया तो फिर बाबा सामने लाएगा ना, पिक्चर तो लाएगा सामने।
हम ब्राह्मण एक वर्ड बहुत यूज करते हैं, बाबा मुरली में बोलते हैं युक्ति। हाँ। लेकिन युक्ति को हम कभी कभी गलत रूप से यूज कर लेते हैं, तो झूठ में और युक्ति में क्या डिफरेंस है, उसमें क्या अंतर है?
झूठ सीधा बोल देते हैं, युक्ति घुमा फिरा के झूठ बोलते हैं, उसको युक्ति बोलते हैं, है ना
जी।
बड़ा चढ़ा के उसको स्पष्ट करते हैं।
एक अगर कोई आप एक एग्जाम्पल देकर के अगर इसको एक्सप्लेन करें।
मान लो अभी कोई झूठ है, सीधा झूठ बोल देते हैं भाई मैंने ये कार्य नहीं किया है, तो नहीं किया। और कई हैं फिर उसको कहेंगे इसने ऐसे कहा था, इसने ये बोला था, इसलिए मैंने ये किया, वो उसकी स्पष्टता करेंगे।
ओके, हम सभी पुरुषार्थ तो कर रहे हैं दीदी, लेकिन हमारा पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थ है, उड़ती कला में हम जा रहे हैं, उसकी क्या निशानी होगी?
उसकी निशानी ये हमारा पुरुषार्थ तीव्र है, एक तो बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, और दूसरा हमारा पुरुषार्थ ठीक चल रहा है तो हम हल्के होंगे, खुशी होगी चेहरे पर, खुशी होगी।
दीदी, कई बारी हम देखते हैं कि जब हम योग में बैठ रहे हैं या मुरली में बैठ रहे हैं तो झुटके आते हैं, सेवा पे है तो झुटका नहीं आएगा, किसी से बात करें मतलब फ्रेश है, अभी रेस्ट करके ही आए हैं, कोई तबीयत भी खराब नहीं है, लेकिन जब हम योग में बैठते हैं, जब हम मुरली में बैठते हैं तो झुटका जरूर आता है, उसका कारण क्या है?
उसका कारण है इंटरेस्ट नहीं होता है, जो बाबा सुना रहा है ना उसके ऊपर ध्यान नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, वैल्यू नहीं है, इसलिए झुटका आता है। बाबा सुना रहे, ज्ञान रत्न बाबा सुना रहे हैं, हम सुन रहे हैं तो उनको झुटका नहीं आएगा। कोई भी इंटरेस्टेड चीज होती है उसमें झुटका नहीं आता है। हाँ, मुरली सुन रहे हैं, मुरली सुनने खातर बैठ गए, लेकिन बाबा के महावाक्य हम सुन रहे हैं। जैसे बाबा कहते हैं ना, मुरली के ऊपर मस्तानी, तो वो मुरली की मस्ती नहीं होती तो झुटका ही आएगा।
कई बारी शायद ये भी रीजन हो सकता है क्या दीदी, कि कोई विकर्म है जो सामने आ रहा है और वो कमाई नहीं करने दे रहा है, ये भी रीजन हो सकता है?
विकर्म को तो हमको दग्ध करना है ना, योग से दग्ध करना है ना, अपने को अटेंशन तो देना है ना, कि बाबा की मुरली हम सुन रहे हैं तो हम उस रीति से सुने। वो होता है, विकर्म भी होता है, लेकिन उसको तो हमें, विकर्म को तो खत्म करना है।
कई बारी स्टूडेंट्स का एक सवाल बहुत उठता है, कितने भी पुराने हो जाएं लेकिन एक सवाल जरूर रहता है, उसमें क्लैरिटी नहीं है, तो दीदी आप वो एक्सप्लेन करें कि बाबा कहते हैं सोल कॉन्शियसनेस, देही आत्म अभिमानी, लेकिन हम आत्म अभिमानी हैं या नहीं है उस मोमेंट, कैसे चेक कैसे करें उसको?
उस समय क्या होता है, मैं आत्मा हूँ तो आत्मिक स्मृति रहेगी और कोई स्मृति शरीर का भान भी नहीं रहेगा। शरीर से जैसे कि मैं न्यारी, एक ज्योति बिंदी आत्मा, हल्कापन महसूस होगा।
ओके, मतलब हम ये महसूस करें कि मैं आत्मा हूँ और साथ में उसके
शरीर
गुणों
से
को
जैसे
भी
कि अलग है, शरीर से जैसे कि अलग अनुभव करेंगे।
तो यहाँ पर बाबा दो तीन वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे विदेही, अशरीरी, आत्म अभिमानी, क्या इनमें डिफरेंस है या सब
वही शब्द है, विदेही, अशरीरी, आत्मा अभिमानी?
ओके ओके, आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है? डू यू हैव एनी क्वेरी, वॉन्ट टू आस्क एनी क्वेश्चन? नो, ओके। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क फ्रीली। यस
दीदी, आपके जीवन का कोई एक अनुभव हो कि जिस समय आपको लगा कि मेरा बाबा पर फेथ और बाबा का मेरे ऊपर फेथ है, आपके आपकी लाइफ स्टोरी हम सुनना चाहेंगे।
बाबा पर हम बच्चों को निश्चय कैसे होता है, कि जब हम बाबा को जानते हैं कि ये बाबा है तो निश्चय हो जाता है। और मेरे को तो बाबा को मैंने जाना ही नहीं कि बाबा क्या है, लेकिन सिर्फ बाबा को देखा, ब्रह्मा बाबा को देखा और बस देख करके ही बाबा के ऊपर आकर्षण हो गई कि बाबा मेरा है। बाबा से ये फीलिंग आती थी, ब्रह्मा बाबा था ना, तो बाबा से ये फीलिंग आती थी कि जैसे अपनापन फील होता था, क्योंकि बाबा तो फरिश्ता दिखाई देता था और बाबा का इतना प्यार होता था, वो प्यार में वो मेरा ही है और उस प्यार से हम बाबा के बन गए। और बाबा के बन करके बाबा ने जैसे चलाए वैसे चले, और कोई भी कार्य भी हमने किया तो कभी भी हमको ये फीलिंग नहीं आई कि ये कार्य सफल नहीं हो सकता है। बाबा सदा हमारे साथ है, साथ का ही अनुभव हम सदा रखा, और साथ है, साथी है, उस अनुभव से ही चल रहे। इसके लिए मैं एक मिसाल सुनाती मेरा, कि जब बाबा अव्यक्त हुए थे तो उस समय जब बाबा साकार में थे तो मैं मधुबन में बाबा के साथ रही थी, और बाबा के साथ रही और बाबा को भोजन बना के खिलाया, तो बाबा के साथ बहुत रहना हुआ। फिर अचानक ही मेरे को मधुबन से जाने का मेरा प्रोग्राम बना, तो मेरे को जाना नहीं था बाबा को छोड़ के, लेकिन मेरे को ज़बरदस्ती जाना पड़ा, तो मैं बिना मन से गई। तो मेरे को बहुत रोना आ रहा था कि बाबा को छोड़ के मैं जा रही हूँ, लेकिन मजबूरी थी मैं गई। फिर जब गई और बाबा जब अव्यक्त हुए तो समाचार आया कि बाबा अव्यक्त हुए, तो उस समय मेरे को बहुत फील हुआ कि बाबा अव्यक्त हो गया और बाबा चला गया। तो बाबा चला गया ऐसा बुद्धि में है, बाबा चला गया अब क्या होगा। तो बाबा उस समय मुरली के अंदर एक शब्द कहा करते थे कि बच्चे जिनका प्यार होगा ना वो अंत समय मेरे पास होंगे। तो मेरी बुद्धि के अंदर वो बात आई कि बाबा कहता है जिनका प्यार होगा वो मेरे पास होंगे, मेरा तो प्यार ही नहीं था, तो मैं बाबा के पास नहीं थी, मैं बाबा से दूर हो गई। अगर मेरा प्यार होता तो मैं बाबा के पास होती। तो उस समय ये मेरे बुद्धि के अंदर ये संकल्प चल रहा था, और ये संकल्प चलते जब मेरा बाबा से प्यार नहीं था मैं बाबा के पास नहीं थी, मेरा प्यार नहीं था मैं बाबा के पास नहीं थी, और मेरे को रोना आता बाबा को, और उसी में जैसे बुद्धि चल रही थी, तो ऐसे ही मैं रोते रोते पलंग पर लेटी थी। तो बाबा मेरे सिर पे खड़ा होकर मेरे सिर पे हाथ रखा और कहा बच्ची मैं तो तेरे साथ हूँ, कहाँ गया हूँ, है बाबा तो तेरे साथ है, बाबा थोड़ी गया है। तो वो फीलिंग मेरे को आज तक है कि बाबा मेरे साथ है, और हम समझ जहाँ बाबा चल रहा है बाबा चला रहा है बाबा करा रहा है, वो हमारा साथी है ना। तो बाबा हमारा साथी हर पल साथ है, हम कभी भी बाबा से अलग नहीं है, ये मेरा अनुभव है। उस दिन से ये मेरी बुद्धि में बैठ गया कि बाबा मेरे साथ है, और उस साथी को मैं सदा साथ लेकर के चलती हूँ, वो सदा मेरे साथ है हर पल। बाबा मुझे हर पल मेरे साथ रहता है और साथ चलता है और बाबा कराता है। ये जैसे साथी को साथ रखेंगे तो वो रहेगा, तो बाबा हर कार्य कराता है, कोई भी कार्य बाबा कराता है।
बहुत ब्यूटीफुल सुनाया दीदी, और अभी भी देखिए बाबा ने आपको अपनी गोद में मधुबन में बिठा के रखा है, क्योंकि बाबा को सच में आपसे बहुत प्यार है और आपको भी बाबा से बहुत प्यार है, और वो दिखता है। तो थैंक यू सो मच आप टाइम निकाल के हमारे बीच आए, थैंक यू सो मच दीदी।